इस बार चिड़िया ने किसी की मीठी बातों में ना आते हुए इनकार कर दिया। जब भी कोई उससे बात करना आता, चिड़िया उस टुकड़े को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती। इस तरह चिड़िया ने अपने अनुभव से सीखा कि दुनिया में हर किसी की बातों में आकर अपने पास की चीजों को खोना नहीं चाहिए। उसने समझ लिया कि कभी कभी लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चिड़िया ने यही बस सीख ली कि सच्ची दोस्ती और चालबाजी में फर्क करना कितना जरूरी है। दिन बीते और चिड़िया अपने नए सबक के साथ ज्यादा समझदार और सतर्क हो गई। उसने अपने घोंसले में रोटी का टुकड़ा सुरक्षित रखा और जब भी भूख लगती थोड़ा थोड़ा करके उसे खाती। इस तरह उसने ना सिर्फ अपने आप को भूख से बचाए रखा बल्कि अपने बच्चों को भी पोषण दिया। समय के साथ चिड़िया ने अपनी सुरक्षा और अपने रिसोर्सेस की भी देखभाल की। उसमें उसने अपने घोंसले को भी मजबूत बनाया और अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ की ऊंची और मुश्किल जगह पर बनाई जहां कौवे और अन्य शिकारी पक्षी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। एक दिन जब चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ थी, उसने देखा कौवा फिर से उसके पास मंडराने लगा। लेकिन इस बार चिड़िया तैयार थी। उसने ना सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि अपने बच्चों को भी कौवे की चाल से आगाह कर दिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे किसी के मीठी बातों में ना आए और कैसे अपनी समझदारी से खतरे को पहचाने और उसका डट के सामना करें। इस बीच कौवा, जो अभी भूखा था, उसने रियलाइज किया कि उसकी चालबाजी से उसने सिर्फ एक वक्त का खाना हासिल किया था, लेकिन उसने एक संभव दोस्त को खो दिया। उसने सोचा कि अगर उसने चिड़िया के साथ दोस्ती निभाई होती तो शायद उसे और भी मदद मिल सकती थी, मगर अब उसकी चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। कौवे ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर कभी किसी से चालाकी नहीं। उसने भी अपने तरीके बदलने का निश्चय किया। वो अब किसी से खाने के भीख नहीं मांगता बल्कि अपने लिए खुद मेहनत करता। स्लोली उसने दूसरे पक्षियों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनके साथ मिलजुल कर रहना सीखा। चिड़िया और उसके बच्चों ने देखा कि कैसे कौवा बदल रहा था और धीरे धीरे उन्होंने भी कौवे को माफ कर दिया। कौवे ने एक नई जिंदगी शुरू की जिसमें उन्होंने दूसरों के साथ सम्मान और दोस्ती से पेश आना सीखा। इस प्रक्रिया में चिड़िया और कौवे दोनों ने महत्वपूर्ण सबक सीखे। चिड़िया ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और समझदारी से काम लेने का ज्ञान पाया, जबकि कौवे ने सीखा कि किसी के साथ धोखा देने से सिर्फ पल भर की जीत मिल सकती है, पर जिंदगी भर के लिए एक संभव साथी खो जा सकता है। ये कहानी हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से जीने का कोई विकल्प नहीं होता, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। सच और ईमानदारी से काम लेने पर हमेशा ही अंत में जीत हमारी होती है। और ये भी दिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर इंसान बनते जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें हमेशा एक नया मौका जरूर देती है। हर प्रोजेक्ट अपने चैलेंजेस और अपने मोटिवेशन के साथ आता है, तो हर प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से मुझे कुछ ना कुछ तरीके से इंस्पायर जरूर करता है। और क्योंकि मेरी दिलचस्पी, मेरा पैशन और बचपन से लेके आज तक जो है मैं इसी फील्ड में काम करना चाहता था, एंड नाउ दैट आई एम गेटिंग इट, तो ये जो सौभाग्य है ये मैं हमेशा जो है संजोए रखना चाहता हूँ। और तो हर प्रोजेक्ट अपने चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ भी लेके आता है। तो हाल ही में मैं गया था भूटान, और भूटान में जो है ये मेरा पहला सफ़र था। 2015 में पहली बार जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं तब जा नहीं पाया था। लेकिन बहरहाल इस बार मैं गया, और एक देश के नाते जो है भूटान बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन ज़्यादा लोगों की उपस्थिति ना ही नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, और जाना और आना दोनों ही बहुत महंगा है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, लेकिन काफ़ी महंगा देश है। उस बजट में जो है आप यूरोप या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज घूम के आ सकते हैं। तो मेनली हमारा जो सफ़र होता है, जो हमारा ट्रैवल होता है, वो होता है फिल्मिंग के लिए, शूटिंग के लिए। तो अब सबसे ख़ास बात, और मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड आदमी हूँ क्योंकि मुझे इतने मौके मिले बाहर जाने के, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, और इसे बेहतर बनाने में कई लोगों का जो है दिमाग लगा है, उनके स्किल्स लगे हैं, उनका हार्डवर्क लगा है। लेकिन मेरे लिए ख़ास बात यही थी क्योंकि मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं होस्ट करता हूँ, प्रेजेंटर रहता हूँ शो का, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोग मुझे अच्छा दिखाने में, मुझे बेहतर दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन कल को कोई उन्हें याद नहीं रखेगा, लेकिन सब लोग जो है मुझे देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इसकी खामी भी लगती है, मुझे अपने आप के लिए एक कहीं ना कहीं गर्व भी लगता है, बट दूसरों के लिए कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि काश ये अपना ब्रांड जो है वो सही तरह से इस्तेमाल कर ले। तो हाल ही में भूटान में गया था, बहुत ही कमाल का देश है, बहुत अच्छे लोग हैं और खाना बहुत अच्छा है, और ये मेरे लिए बहुत ही अलग कल्चरल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि भारत के पास होने के बावजूद ये देश जो है वो बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है, विपरीत है, और बहुत सारी न्यूएंसेस यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चली भूटान के बारे में, जो पहले मुझे नहीं पता थी। और याद रखिएगा, मैं 15 साल से ट्रैवल करते आ रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता है तो बहुत सारे लोगों को, मैं ये मानता हूँ कि नहीं पता होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि भूटान जो है वो बहुत ही छोटा देश है और घिरा हुआ है भारत, नेपाल और तिब्बत, जो अभी चीन के हाथ में है इनसे। दूसरी बात यह है कि भूटान जो है वो शांतिप्रिय देश है, और जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में जो है बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी बिहार से, और बुद्धिज़्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्शिप सेंटर है भूटान, भूटनीज लोगों के लिए। तो भूटान में जो है उसकी शुरुआत हुई थी भारत में, उसके बाद भूटान पहुंचे, और भूटान के बाद जो है वो बाकी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देशों में बुद्धिज़्म फैला। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, यहाँ पे एक सस्टेनेबल फी होती है जो काफ़ी महंगी होती है, भारतीयों के लिए काफ़ी सस्ती होती है, सस्ती तो नहीं कहूँगा बट देखिए 1400 रुपये हो जाता है दिन का, जी हाँ ट्रिप का नहीं दिन का, बट बाकी लोगों के लिए और भी ज़्यादा महंगा है, इट्स अराउंड $100। तो ये जो है ये फीस देते देते जो है बैंड बन जाती है क्योंकि काफ़ी महंगा अफेयर हो जाता है, $100 आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,000 से 9,000 रुपये प्रतिदिन। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, अगर आप अपनी गाड़ियाँ लेके आना चाहते हैं तो वो आप लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक अलग फीस देनी होती है सिर्फ गाड़ियों के लिए, ताकि आप भूटान के रस्तों के ऊपर वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। उसके अलावा होटल, उसके अलावा जो गाइड है, ये कंपलसरी आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटी के साथ करना होता है, और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महंगी है वहाँ पे। बट बहरहाल अगर आप मुझसे पूछे कि क्या ये मेरा सफ़र अच्छा रहा, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि मुझे पैसा देना नहीं होता है, कंपनी को देना होता है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि मुझे मौका मिला इस बार बहुत सारी, यू नो वो हम कहते हैं ना कि जाके सिर्फ छू के आना, वो वाला सीन नहीं था, वो वाली चीज़ नहीं थी, तो काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला उनके फेस्टिवल्स के बारे में, उनके खाने के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, कल्चरल मिथ्स, लेजेंड्स, फोकलोर, इन सब के बारे में। तो मुझे लगता है कि हर ट्रैवल अपने आप में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा ये पिछला वाला ट्रैवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये देश जाऊँ, यहाँ के टाइगर मॉनेस्ट्री को विज़िट करूँ, और कभी किसी कारणवश वो होता था नहीं होता था, लेकिन वो प्लान बन ही नहीं पाया। लेकिन इस बार जब बना तो मैंने अपने फिंगर्स क्रॉस किए और सोचा कि बॉस इस बार अगर हो जाए तो लाइफ बन जाए, और लाइफ बन गई। भूटान बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हेन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड, व्हाट्स वन मेमोरी और इवन दैट स्टैंड्स आउट। बचपन की तो बहुत सारी कहानियां हैं, बचपन की कहानियां अगर मैं जाऊं